नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं कनकलता। अमेरिका ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष जारी। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, यूरोपीय संघ यूक्रेन को वादे के मुताबिक 90 अरब यूरो का ऋण देने के तरीके खोजेगा। रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद उल फित्र आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से, जबकि ईशा रानी बरुआ का सामना थाईलैंड की पिचमोन ओपत निपुत से होगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर ताजा सैन्य हमले और जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है, जिससे ईद उल फित्र और नवरोज के जश्न पर भी असर पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की है कि ट्रंप प्रशासन समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों में एक महीने की छूट देगा, ताकि बढ़ती तेल कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। एक रिपोर्ट।
यह छूट कल तक जहाजों पर लदे ईरानी तेल पर लागू होगी और अगले महीने की 19 तारीख तक प्रभावी रहेगी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में ईरान के साथ युद्ध विराम की संभावना से इंकार किया है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अमेरिका 3 और युद्धपोत तथा करीब 2500 मरीन सैनिकों को क्षेत्र में तैनात कर रहा है। यह संभावित जमीनी कार्रवाई का संकेत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि अन्य देशों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य की रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी अभियान का साथ न देने पर नाटो से योगियों की आलोचना भी की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
संघर्ष में अब तक ईरान में 1300 से अधिक, लेबनान में 1000 से अधिक, इसराइल में 15 और 13 अमेरिकी सैन्य कर्मियों की मौत हो चुकी है। लेबनान और ईरान में लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत ने समन्वित और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है। विभिन्न मंत्रालयों के संयुक्त उपायों से सरकार देश में निर्बाध ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है और साथ ही जमाखोरी, कालाबाजारी और अफरातफरी में खरीदारी को रोकने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रही है। ईरान के साथ चल रहे इसराइल अमेरिका युद्ध के मद्देनजर अपनी तटस्थता का हवाला देते हुए स्विट्जरलैंड ने अमरीका को हथियारों के निर्यात की मंजूरी निलंबित कर दी है। कल जारी एक बयान में स्विट्जरलैंड सरकार ने कहा कि संघर्ष की अवधि के दौरान ईरान के साथ संघर्ष में शामिल देशों को युद्ध सामग्री के निर्यात को अधिकृत नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप अमेरिका को कोई नया हथियार निर्यात लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया है। विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय का नेतृत्व परिसर में यहूदी विरोधी घटनाओं से निपटने में विफल रहा, जिसके आधार पर सरकार मौजूदा अनुदानों को रोकने और पहले से दिए गए अनुदानों की वसूली की मांग कर रही है। ये मुकदमा मैसाचुसेट्स की संघीय अदालत में दायर किया गया है। इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का एक और चरण माना जा रहा है। शुरुआत में ये मामला परिसर में यहूदी विरोधी घटनाओं की जांच के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में ये एक बड़े टकराव में बदल गया। भारत और भूटान ने डाक सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य डाक सेवाओं, तकनीकी विकास, क्षमता निर्माण, लॉजिस्टिक्स, डाक टिकट संग्रह और जानकारी के आदान प्रदान में सहयोग बढ़ाना है। डाक विभाग के सचिव की भूटान यात्रा के दौरान भारत के संचार मंत्रालय और भूटान के अवसंरचना तथा परिवहन मंत्रालय के बीच ये समझौता किया गया। दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा है कि हंगरी के निरंतर विरोध के बावजूद यूरोपीय संघ यूक्रेन को वादे के मुताबिक 90 अरब यूरो का ऋण देने के तरीके खोजेगा। ब्रसल्स में कल हुए शिखर सम्मेलन के बाद सुश्री लायन ने कहा कि यूरोपीय संघ के नेता हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन को यूक्रेन को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण ऋण पर लगी रोक हटाने के लिए मनाने में विफल रहे। हंगरी के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को दिए जाने वाले ऋण पर लगी रोक हटाने का विरोध किया है। भारत ने अफगानिस्तान को काबुल में हुए पाकिस्तानी हवाई हमले में घायलों की मदद के लिए आपातकालीन दवाएं और राहत सामग्री की 2 टन 500 किलोग्राम की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस कठिन घड़ी में हर संभव मानवीय सहायता प्रदान करता रहेगा। दक्षिण कोरिया में डेजोन शहर में गाड़ियों के कलपुर्जे बनाने वाले कारखाने में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। घटना में 59 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जबकि 4 लोग लापता हैं। दक्षिण कोरिया के गृह और सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार 25 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 500 से अधिक दमकल और पुलिसकर्मियों को बचाव कार्यों के लिए तैनात किया गया है। देश विदेश में आज ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रमजान के पवित्र महीने के बाद आने वाला ये त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का संदेश देता है।
समूचे देश में आज सुबह से ही ईद की रौनक दिखाई दे रही है। मस्जिदों और ईदगाहों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर अमन, शांति और खुशहाली की दुआ कर रहे हैं। इधर दिल्ली में जामा मस्जिद, फतेहपुरी मस्जिद और शाही ईदगाह में मुख्य नमाज अदा की जा रही है। ईद उल फित्र रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक है। इसमें मुसलमान रोजा रखकर आत्म संयम और इबादत करते हैं। एक दिन पहले चांद दिखने के बाद ईद की शुरुआत होती है। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं।
श्रीलंका के कोलंबो में प्रमुख नमाज अदा की गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने सभी को शांति और सौहार्दपूर्ण ईद की शुभकामनाएं दी। अमेरिका के हवाई राज्य में तेज बारिश के कारण आई बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया है और कई घर अपनी नींव से खिसक गए हैं। होनोलुलु के उत्तर में स्थित शहरों में हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने 120 साल पुराने वाहियावा बांध के टूटने की आशंका जताई है। हालांकि होनोलुलु के प्रवक्ता यान शुरिंग ने बताया है कि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज फ्रांस में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की तन्वी शर्मा का सामना जापान की नोजोमो ओकुहारा से होगा। तन्वी ने कल क्वार्टर फाइनल में जापान की नात्सुकी निदारा को हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में भारत की शरानी बरुआ का सामना आज रात थाईलैंड की पिचामोन ओपटनीपुत से होगा। स्क्वाश में भारत की अनाहत सिंह, तन्वी खन्ना, अभय सिंह और वीर चोटरा ने कल मुंबई में इंडियन ओपन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। आज सेमीफाइनल अनाहत और तन्वी, कृपया से फिर से सुन लें, आज सेमीफाइनल में अनाहत और तन्वी चुनौती पेश करेंगी। पुरुषों के क्वार्टर फाइनल में अभय ने मिस्र के यासीन शोहदी को हराया, जबकि वीर चोटरानी ने मिस्र के मोहम्मद शरफ को पराजित किया। अंतिम 4 में सिंह का मुकाबला मलेशिया के अमिशन राज चंद्रन से होगा, जबकि चोटरानी का सामना मलेशिया के संजय जीवा से होगा। सरकार ने आयात बढ़ाकर देश भर में उर्वरकों की पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में आयात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यूरिया का आयात 48 लाख टन से बढ़कर 89 लाख टन हो गया, जबकि डाइअमोनियम फास्फेट का आयात 43 लाख टन से बढ़कर 60 लाख टन हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में ढील दी। ईरान और इसराइल के बीच संघर्ष जारी। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लायन ने कहा, यूरोपीय संघ यूक्रेन को वादे के मुताबिक 90 अरब यूरो का ऋण देने के तरीके खोजेगा। रमजान के पवित्र महीने के समापन का प्रतीक ईद उल फित्र आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और फ्रांस में ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नोजोमी ओकुहारा से, जबकि ईशा रानी बरुआ का सामना थाईलैंड की पिचमोन ओपटनीपुत से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।